जो प्रेरित काम की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं इन दिनों में, वो इस सुसमाचार से संबंधित है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, चार जो सुसमाचार उसमें प्रभु ने अपने सुसमाचार को दिया और सबसे बढ़कर अपने जीवन को दिया। यीशु सुसमाचार है, उसने अपने जीवन को दिया और बाहर देखा थी और उसने कुछ शिक्षाएं दी, निर्देश दिए, उन्हीं निर्देश का आदर पालन करते हुए कलीसिया के बारे में बोला। और तब प्रेरित काम में कलीसिया की स्थापना है, एक और सुसमाचार बढ़ रहा है, लोग विश्वास कर रहे हैं और कलीसिया बढ़ रही है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरा विरोध भी बढ़ रहा है, झूठी शिक्षा भी बढ़ रही है और लोग सताए भी जा रहे हैं और ये क्रम उसी समय से लागू रहा। अगर और भी पीछे आप जाके देखेंगे यीशु मसीह के आने से पहले भी, तो हम देखते हैं ये क्रम उत्पत्ति के की पुस्तक से हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से वचन के विरोध में या व्यवस्था के विरोध में लोग कार्य करते रहे। बहुत सारे भविष्यवक्ता आए, बहुत सारे नबी आए, उनके साथ कैसा व्यवहार करा। तो परमेश्वर का वचन आरंभ से चला आ रहा है, उत्पत्ति की पुस्तक से हम देखते चले आ रहे हैं। और जैसे हम उत्पत्ति 3 अध्याय में देखते हैं किस रीति से परमेश्वर पहली प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने पूरा करना आरंभ किया। पिछली बार जब हम अध्ययन कर रहे थे, विचार कर रहे थे, तो 13 अध्याय में हम थे और 13 अध्याय ये वो अध्याय है जहाँ पर पौलुस और बर्नबास को चुना जाता है। और हमने पौलुस और बर्नबास के बारे में कुछ बातों को देखा था, किसी परमेश्वर ने पौलुस और बर्नबास को चुना है। और ये सच है, आपके साथ शेयर करता कि पौलुस को परमेश्वर ने आरंभ से जन्म के समय उसको चुना किया था। गलती उसके 1 अध्याय 15 पद में वो कहता है मैं माता के जन्म के समय माता के गर्भ में से चुना गया। रोमियो 1:1 में कहता है कि मैं सुसमाचार के कार्य के लिए अलग किया गया, चुना गया। प्रेरित 13 में हमने पिछली बार देखा था 2 पद में कि सेवा कार्य के लिए वो अलग किया गया। सो सुसमाचार के लिए उसका चुना जाना, उसको अलग करना। एक मसीह जीवन एक अलग किया हुआ जीवन है। क्रिश्चियन लाइफ इज अ लाइफ ऑफ सेपरेशन। हम जो सेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो संत शब्द इस्तेमाल करते हैं, संत हिंदी में है, सेंट इंग्लिश में है। सेंट मतलब सेट अपार्ट, जिसको अलग किया गया हो। और एक मसीह विश्वासी उस संसार से अलग किया गया है। और हम देख रहे थे 13 अध्याय में किस प्रकार से ये सुसमाचार का कार्य आरंभ हुआ और ये फैल रहा है। और ये पहली मिशनरी यात्रा है जहां पर पौलुस और बर्नबास को भेजा जाता है। उसके साथ मरकुस भी है जो यौना है और जो बीच में चला जाता है। और हमने शायद समता 45 पद तक हम गए थे और उसके बाद छोड़ा था, लेकिन फिर भी मैं रिविजन के लिए थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। और जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से 26 पद में तो कहता है कि इसलिए ही ये उद्धार का वचन भेजा गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार आया। अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार का वचन भेजा गया। जो उद्धार के बारे में मैंने पिछले बुधवार को भी थोड़ा समझाया था, मोक्ष क्या, उद्धार क्या है, इस बात को हमने देखा था। 29 पद में जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी कर ली, तब उसे क्रूस पर से उतार कर कब रख दिया, परंतु परमेश्वर ने उसे मृतक को जिला उठाया। और हम बार बार प्रेरितों का में देख रहे हैं कि प्रेरितों का प्रचार ये है, तुमने उसे मार डाला, तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, तुमने उसको ऐसा किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको 3rd दिन जी उठाया। और मेरे प्रियो, मसीह जो है या क्रिश्चियनिटी जो है, इस बात को ध्यान रखिए, वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर आधारित है। यदि प्रभु यीशु मसीह जी ना उठे होते तो ना कलीसिया होती, ना विश्वासी होता, ना सुसमाचार होता, ना मसीह का नाम होता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म अनिवार्य था, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु अनिवार्य थी, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान अनिवार्य था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठना अनिवार्य है। और न केवल जी उठा, लेकिन लोगों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गया और फिर से पुनः वापस आएगा, ताकि वो मुझे और आपको अपनी कलीसिया को हमेशा हमेशा ले जाए। और उसका पुनरुत्थान भी अनिवार्य है, ये अधन है, आशा है। और इस दिन 32 पद में हम तुम्हें इस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी ये सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जुलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूर्ण कर दी। बार 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 ये भजन संहिता की प्रतिज्ञाओं को पहले से प्रतिज्ञा की गई थी, प्रभु की जो योजना थी, तो वो ये कहता है। तब उसका 37 पद में कह रहा है, पर जिसे परमेश्वर ने जीवित किया वो सड़ने ना पाया। दाऊद तो सड़ गया, दाऊद तो मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सड़ने नहीं पाया। दाऊद एक प्रतीक है, लेकिन दाऊद के अंदर भी पाप था, मनुष्य पापी है, पर दाऊद भी मेरे और आपके समान एक दिन जिएगा और उसको नए शरीर और नए जीवन और नए सब कुछ मिलेगा जैसे मुझे और आपको है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से इन प्रेतों के द्वारा कहला रहा है। तब उसके बाद 39 पद में, और इसी के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाले, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस समाचार के द्वारा, उस सुसमाचार द्वारा विश्वास करने वाले उन सब बातों से छुटकारा पाता है जिसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते थे। ये सच है, जो चीज व्यवस्था छुटकारा नहीं दे सकती थी वो प्रभु यीशु मसीह में उसके बलिदान के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा मिला। प्रत्येक विश्वास करने वालों को छुटकारा मिला, व्यवस्था के कामों से छुटकारा मिला, पाप के दंड से छुटकारा मिला, मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिला। प्रभु ने मुझे और आपको आजाद दिया और ये प्रचार ये लोग कर रहे हैं। जब 44 पद में आते हैं, अब यहूदी लोग उनके से उनके सुसमाचार को सुनने के लिए तैयार नहीं थे, कुछ विरोध हुआ, सब कुछ हुआ। 43 पद में जब आराधना समाप्त हो गई तो बहुत से यहूदी तथा यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत लोग पौलुस और बर्नबास के पीछे चल पड़े। उन्होंने वार्तालाप करते हुए उनसे आग्रह किया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। इन लोगों ने कहा, इनको कहा, ठीक है तुमने विश्वास किया है लेकिन अब तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है। पर 44 पद में तब क्या हुआ? अगले सबको प्राय सारा नगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा, परंतु जब यहूदियों ने भीड़ को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए। अब यहाँ पर हम एक कार्य को देख रहे हैं, यहाँ पर विरोध को देख रहे हैं, लेकिन विरोध के साथ साथ परमेश्वर एक और कार्य करने जा रहा है। क्या कार्य करने जा रहा है इस पर हम देखेंगे। निंदा करते पौलुस की कई बातों खंडन कर ले, तब पौलुस तथा बर्नबास ने दृढ़ता पूर्वक करा, ये अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु इसलिए कि तुम उसकी अवहेलना करते हो तथा अपने आप को अनंत जीवन के अयोग्य ठहराते हो, तो देखो हम गैर यहूदियों की ओर फिरते हैं। अब ये यहाँ से अन्य जातियों की ओर फिर लिए, ये सच है, क्योंकि इन यहूदियों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, उसके वचन को स्वीकार किया, उसको स्वीकार करने तैयार नहीं। ठीक है, तुम अगर अपने आप को ज्यादा धर्मी समझते हो, तुम नहीं सोचते कि तुम्हें उद्धार की जरूरत है, तुम नहीं सोचते कि तुम्हें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, ठीक है, हम उस सुसमाचार को उन लोगों के पास जाएंगे जो अन्य जाति हैं, और उन्होंने तब जाकर के अन्य जातियों पर प्रचार करना शुरू करा, क्योंकि वचन पहले लिखा होता, क्योंकि प्रभु ने हमें ये आज्ञा दी है, मैंने तुम्हें गैर यहूदियों के लिए ज्योति ठहराया है कि तुम पृथ्वी के छोर तक उद्धार का कारण बनो। जब सामर्थ पाओगे पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा और तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर छोर तक मेरे गवाह होगे। और ये कार्य हो रहा, अब ये सुसमाचार पृथ्वी के छोर छोर तक फैलता चला जा रहा है। तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं और तब लिखा है, जब गैर यहूदियों ने सुना तो वे आनंदित होने तथा प्रभु के वचन की प्रशंसा करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे, जिनको परमेश्वर चुना था, उद्धार की प्राप्ति परमेश्वर के चुनाव पर निर्भर होती है, उन्होंने विश्वास किया और प्रभु का वचन पूरे क्षेत्र में फैलता चला गया। प्रभु के कार्य को रोक नहीं सके, ठीक है तुम नहीं सुन रहे हो, दूसरे सुनेंगे। परंतु यहूदियों ने कुलीन स्त्रियों तथा शहर के प्रमुख को भड़काया और पौलुस तथा बर्नबास के विरुद्ध उपद्रव करवा करके अपनी सीमा के बाहर कर दिया। उनका आगे चल करके और इस बात को देखेंगे कि कैसे उनको भड़काया, कैसे उनको करा, वे ईर्ष्या से भर गए, वे निंदा करने लगे, ये भड़काने लगे, किस प्रकार से बार बार इस चीज को देखते हैं। 14 अध्याय में भी हम देखेंगे, उसी पर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक चीज है जो आखिर बात है, और चेले आनंद तथा पवित्र आत्मा से निरंतर परिपूर्ण होते रहे। यहाँ पर आप ये नहीं कह दे पढ़ रहे हैं कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। मैं बार बार प्रेरितों काम की पुस्तक में इस बात को दोहरा रहा हूँ, केवल 4 घटनाएं हैं, वो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जहाँ की 4 अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के साथ परमेश्वर का ना केवल आत्मा मिला गया, लेकिन वहाँ पर उन्होंने अन्य भाषा को बोला, क्योंकि वहाँ को समानता को लाता। पहले हमने यहूदियों के बारे में देखा था, फिर उसके सामरियों के बारे में देखा था, फिर उसके अन्य जाति के बारे में देखा था, आगे चल के 19 अध्याय में फिर एक और के बारे में देखेंगे कैसे। लेकिन बार बार प्रेरितों काम की पुस्तक में कह रहा, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। पवित्र आत्मा की भरपूरी या परिपूर्णता अन्य भाषा ही प्रतीक नहीं है, जो परमेश्वर वरदान दे सकता है और देता है, प्रभु की स्तुति हो। लेकिन हम ये नहीं कहते कि अगर तुम अन्य भाषा नहीं बोलते तो पवित्र आत्मा तुम्हारे में नहीं है, वो ऐसा बाइबल नहीं सिखाती, हम बार बार इस बात को देखते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा सबसे ज्यादा पवित्र बनाता है, पाप से बचाता है, पवित्र आत्मा सामर्थ्य प्रदान करता है कि आप सच्चाई के साथ प्रभु के सुसमाचार को दे सकें और अपने आप को बुराई और संसारिता से अलग कर सकें। अब ये पहली मिशनरी यात्रा जा रही है। जब 13 अध्याय को पढ़ेंगे तो कई स्थानों के नाम आते चले आते हैं। अब ये वहां पर आगे बढ़े, जब ऐसा हुआ तो लिखा हुआ पहले पद से लेकर के 5 पद तक देखते किस रीति से परमेश्वर का सुसमाचार एक दूसरी जगह में पहुंच रहा है, अभी मैं उसको बताऊंगा। तब उसके बाद किस प्रकार से 6 पद से लेकर के 20 पद तक विरोध के बाद भी सुसमाचार का प्रभाव पड़ रहा है और परमेश्वर अपने चिन्हों के द्वारा अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है। तो दो चीजें उसमें दिखती हैं, दो घटनाएं मुख्य हैं। 8 से 18 तक आश्चर्यक्रम सुसमाचार का कार्य, एक आश्चर्यक्रम है और सुसमाचार का कार्य। दूसरा 19 और 20 पद पथराव है और विरोध है। पहले पद से लेकर के पहले 5 पदों को देखना चाहेंगे। फिर ऐसा हुआ कि इकोनियमस, ये इकोनियम जो है ये करीब 150 किलोमीटर दूर अंताकिया से शहर था। ये एशिया माइनर में, एशिया माइनर नगर है, बहुत अधिक प्रसिद्ध नगर है, लोग समझदार और अच्छे लोग यहाँ पर रहते हैं बहुत है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दूसरी तरह से भी हैं, जैसे कुछ देवी देवताओं को पूजना है और विशेष 2 देवता थे जिनके आगे बारे में देखेंगे, जो यहाँ पर पाए जाते थे, जिनके लोग आराधना करते थे और उनके सामने आकर के बहुत बड़ा बड़ा बलिदान चढ़ाया करते थे, हम आगे देखते जाएंगे। पौलुस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो 16 अध्याय में फिर हम देखते हैं इसी स्थान के नाम को, जब हम 16 अध्याय में जाएंगे। लेकिन इसी स्थान में तिमोथियुस लुस्त्रा और इसी जन के स्थान का जन था जो पौलुस को मिला था और पौलुस के साथ 16 अध्याय से उसके साथ सेवा में सम्मिलित हो जाता है। यद्यपि तिमोथियुस बचपन से विश्वास में आया था उसकी नानी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर तब आप आगे जाएंगे, जब तिमोथियुस में जाएंगे तब तिमोथियुस की पत्री को जब लिखता है पौलुस, तिमोथियुस को धन्यवाद देता है, उसकी प्रशंसा करता है, तो याद दिलाता है कि इसी स्थान में किस प्रकार से उसके सामने विरोध भी हुआ था पर लोगों ने उसकी सहायता की थी। तो जब हम किसी स्थान के बारे में पढ़ते हैं तो कई बार उन स्थानों का अध्ययन करना अच्छा होता है ताकि हम उसकी बैकग्राउंड को देखें और समझ सकें क्यों उसका नाम आया। कुछ नाम जगह के आए और चले आते हैं लेकिन कुछ नामों की विशेषता पाई जाती है। तो यहाँ पर उनका एक केंद्र बन गया था कुछ समय के लिए। ये लोग जगह जगह जाते थे, कुछ कुछ स्थानों में रुकते थे, वहाँ सुसमाचार प्रचार करते थे, कुछ दिन वहाँ रहते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे, फिर वहाँ रुकते थे, फिर वहाँ प्रचार करते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे। जहाँ विरोध होता था वहाँ तुरंत चले जाते थे, लेकिन जहाँ लोग स्वीकार करते थे तो वहाँ पर कुछ समय रुकते थे। ये इनकी मिशनरी यात्रा में सुसमाचार की प्रार्थना की यात्रा में निरंतर था। और 13 अध्याय से हम पहली सुसमाचार की यात्रा को देखते हैं जो 14 अध्याय के अंत में समाप्त होती है। 3 सुसमाचार प्रचारी मिशनरी यात्रा का वर्णन है। फिर ऐसा हुआ कि इकोनियम में वे 7 साथ यहूदियों की आराधना में गए और उन्होंने इस ढंग से बातें की कि यहूदियों और यूनानी दोनों में से बहुत लोगों ने विश्वास किया। अब ये जो यूनानी लोग थे यहाँ पर, ये लोग, ये यूनानी मैं पहले में समझा चुका हूँ, ये अधिकतर ये यहूदी मत को मानने वाले थे, यूनानी भाषा बोलते थे लेकिन यहूदी मत को मानते थे और इन यूनानी भाषा बोलने वालों का उनके ऊपर एक बहुत अधिक प्रभाव था। और अधिकतर जो उस समय समितियाँ होती थी या डिसीजन मेकर होते थे, निर्णय लेने आते थे, वो यूनानी पृष्ठभूमि के लोग ज़्यादा होते थे। उनको ज्ञानवान भी माना जाता था, बुद्धिमान भी माना जाता था, समझदार भी माना जाता था, धनवान भी होते थे। और इस ढंग से बातें की, यहूदी और यूनानी दोनों ने बहुत लोगों ने विश्वास किया, परंतु जिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया उन्होंने गैर यहूदियों के मनों को उत्तेजित किया। आप देखिए, कुछ लोगों ने विश्वास किया है और जब विश्वास किया तो बहुत अधिक आनंदित हुए हैं, धन्यवादित हुए, सब कुछ हुआ है। लेकिन दूसरे पद में, अब दूसरे पद में एक घटना को हम देखते हैं, परंतु जिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया, क्या करो क्या कराए, इन शब्दों पर ध्यान दें, उन्होंने गैर यहूदियों के मनों को उत्तेजित किया और भाइयों के विरुद्ध उनमें कटुता उत्पन्न कर दी। परमेश्वर के कार्य की बाद में बाधा इस बड़े गंभीर स्वभाव से होती है। ये तो ये वो लोग थे जो सुसमाचार को तिरस्कार कर रहे थे। आज भी हम वर्तमान में ये जो लोग सुसमाचार को मानने का भी दावा करते हैं उनके अंदर भी चीजें पाते हैं। क्या करते हैं? पहली बात, वो उत्तेजित करते हैं लोगों को, अरे तुम इनकी बातें सुन रहे हो, ये इन्होंने ऐसा करा है, इन्होंने ऐसा करा है, और दुनिया में ये हल्ला मचा देते हैं। उत्तेजित कर मतलब भ्रम फैला देते हैं, उनको कंफ्यूज कर देते हैं। भ्रमित कर देते हैं। सावधान रहिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको इन यहूदियों के समान नहीं बनना है। अगर हम इनके समान में बनेंगे तो हम सुसमाचार के शत्रु कहलाए जाएंगे। ये सुसमाचार के शत्रु थे और आज मुझे और आपको सावधान रहना चाहिए और सोचना है क्या हम सुसमाचार के शत्रु तो नहीं बन रहे हैं। सब उसके बाद दूसरे भी कहता है, और उनके क्या है भाइयों के विरुद्ध उनमें कटुता उत्पन्न कर दी, कड़वाहट। ये इस प्रकार का काम कर रहे हैं। कौन कटुता उत्पन्न करता है? जिसके मन में विश्वास का अभाव है। पहली चीज, इनके मन में विश्वास का अभाव था। दूसरा, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता। कहते तो हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करते। ज्ञानवान तो है लेकिन फिर भी निर्बुद्ध है। कहते तो हम प्रकाश में चलते हैं फिर भी अंधकार में है। ऐसे व्यक्ति हूं। और मुझे और आपको वर्तमान समय में सावधान रहना, बाहर सावधान रहना है, भीतर सावधान रहना है। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन बार बार सावधान करता है कि भ्रमित करने वाले बाहर के लोग कम होते हैं लेकिन भीतर के ज्यादा हो जाते हैं। ये वो लोग जो उनमें शामिल थे, ये क्या कर रहे हैं? कटुता उत्पन्न कर रहे हैं। क्या परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा हमें एक दूसरे प्रति भ्रम उत्पन्न कराता है, अलगाव उत्पन्न कराता है, झूठ उत्पन्न कराता है? नहीं, केवल शैतान जो झूठ का पिता है। यदि मैं और आप अपने जीवन में शैतान को अवसर देते हैं तो हम उसी कार्य करेंगे जो शैतान करवाता है। मुझे और आपको बहुत अधिक सावधान रहना है। सच्चाई को कहना ये अच्छी बात है लेकिन झूठ और छल और धोखा को लेकर चलना ये शैतान का काम है। हम अपने जीवन को ना जानते हुए कहीं ना कहीं शैतान के हाथों में देखे उसी के साथ चलाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। तीसरी बात, जिनके मन में विश्वास का भाव है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जो अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, अपने किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थ को पूरा चाहते हैं, चाहे अपने अगुवेपन के स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, चाहे अपने धन के पूर्ति के लिए अपने स्वार्थ को पूरा चाहते हैं, चाहे प्रभु ने आपको बड़ा बनाने के लिए स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं, चाहे किसी को दबाने के लिए अपने स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं, ये वे हैं जो स्वार्थ पूरा। यही आगे भी हम देखेंगे कलीसिया, प्रेरित काम की कलीसिया में जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो बहुत दिखाई गई है हर जगह। जो आज भी हम बार बार वचन पढ़ते, तब और अब उस समय था, आज क्या हो रहा है? आज कलीसियाओं में क्या है? आज के समय में क्या है? सुसमाचार प्रचार में क्या है? और वो कह रहे हैं कि क्या, तीसरा पद, इसलिए वे वहां बहुत दिनों तक रहे और प्रभु पर भरोसा रखते हैं। अब ये देख लीजिए कि किस प्रकार से, तो साधा रहे मुझे और आपको आगे बढ़ने से पहले, जो स्वार्थ के साथ साथ ये झूठ का सहारा लेते हैं और उसके साथ वचन को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करते। अभी हम कल एक भाई के साथ बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। उस भाई ने कहा कि हम बात सुन करके दूसरे से बात करने में सावधान रहते हैं कि कुछ ना कुछ बात में गड़बड़ हो जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये अच्छी समझ की बात थी और ये सच है, हमें सीखना है, समझना है। और मेरे प्रियो, हम देखते हैं तीन पद में कह रहा है परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यहाँ। इसलिए वे वाप्त रहे लेकिन उन्होंने क्या करा, और प्रभु पर भरोसा रखते हुए, कि निर्भरता प्रभु के पर निर्भर है, प्रभु पर निर्भर रहते हुए वो प्रचार करते रहे। प्रचार का कार्य नहीं रुका, सुसमाचार प्रचार का कार्य नहीं रुका। दूसरी बात क्या कह रहा है, वो प्रचार करते रहे और प्रभु उनके हाथों चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह की साक्षी देता रहा। प्रभु चिन्ह और अद्भुत काम दिखाकर, तब उसके बाद तीसरी बात, अनुग्रह के वचन की साक्षी देता है। परमेश्वर का वचन अनुग्रह का वचन है। हमारे वचन में अगर हमसे गलती होती है, त्रुटि होती है, तो हमें देखना है, समझना है और उस बात को दीनता से मांगना है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है, तब क्या हुआ चार पद में, जब ये सब कुछ हुआ, परंतु नगर के लोगों में फूट पड़ गई, जिससे कुछ तो यहूदियों के पक्ष में हो गए और कुछ प्रेरितों के पक्ष में हो गए। क्या हो गया, दो समूह बट गया, कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग उधर हो गए। ये किससे शुरू करा? यहूदियों ने शुरू करा। कब शुरू करा? जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते थे। क्यों? उन्होंने उन्हें लोगों को भ्रमित किया, लोगों से झूठ बोला, छल किया, ये सब कुछ किया और लोगों को बांट दिया, ये कर दिया। दो खेमे में, दो पक्ष में बट गए। मेरे प्रिय, मुझे और आपको सावधान रहना है। परमेश्वर जोड़ने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर सही दिशा में ले चलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर केवल एक ही से नहीं चाहता कि एक ही झुकता रहे, वही माफी मांगता रहे, लेकिन दूसरे से भी चाहता है परमेश्वर कि वो भी क्षमा मांगकर अपने आप को दीन करे। तब पांचों पद में, परंतु जब गैर यहूदी और यहूदियों ने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर उनके साथ दुर्व्यवहार करने तथा पथराव करने का व्रत किया, तो वे इसे जानकर लुकानियों, लुस्त्रा और दिर्बे के नगरों में और आसपास के प्रदेशों में भाग निकले और वहां सुसमाचार सुनाते रहे। वहां से चले गए। प्रभु ने कहा था जब तुम्हें कोई स्वीकार ना करे, अपने शिष्य को पहले उसने निर्देश दिया था, जब कोई तुम्हें स्वीकार ना करे तो पांव की धूल झाड़कर वहां से चले आना। मेरे प्रियो, ये सच है। जब हमें उस समय, हम लोग बाराबंकी में थे, उस समय का समय अलग था। गांव गांव देहात देहात में बहुत जगह हमने प्रचार किया। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु के अनुग्रह के लिए कितने मेलों में प्रचार में, और कई बार विरोध के समय में चुपचाप से वहां से हट जाना पड़ता था और वो ज्यादा बेहतर था। अलग परिस्थिति, कई जगह हम खड़े भी रहे, कई जगह बातचीत भी, कई जगह बहुत सारा हुआ, लेकिन हर समय अलग अलग रहा। प्राय पौलुस समझदार थे, उन्होंने कहा ठीक है तुम नहीं स्वीकार करो कोई बात नहीं, अब तुम दंडित हो गए क्योंकि तुमने परमेश्वर के सुसमाचार को स्वीकार नहीं करा और इसलिए तुम जानो। लेकिन परमेश्वर का कार्य सुसमाचार का कार्य हुआ नहीं। मेरे प्रियो, मरने के अंतिम दिन तक हमें सुसमाचार के कार्य के प्रचार में लगे रहना है। अब 8वें से लेकर 20 पद तक जो हम देखते हैं, हमने देखा किस प्रकार से विरोध भी है, सब कुछ है, सुसमाचार प्रचार हो रहा है। इस लुस्त्रा में दो मुख्य घटना घटी। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जिसके पैर निर्बल थे। मैंने आपसे बताया था कि जो घटनाएं पतरस के साथ घटी गई हैं 12 अध्याय के अंदर अंदर, वही घटनाएं ठीक पौलुस के साथ भी घट रही हैं। वहां पर भी एक लंगड़ा था जिसको उन्होंने चंगाई दी थी, यहाँ पे भी एक झोले का मारा है, लंगड़ा है, ये लोग चंगाई दे रहे हैं। वो माँ के गर्भ से ही लंगड़ा था और कभी नहीं चला था। ये व्यक्ति पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाई, देख करके उसे चंगा हो जाने के विश्वास है, बड़ी जोर से कहा अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जा। पतरस ने कहा हमारे पास धन नहीं है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कुछ है, यीशु नासरी के नाम से उठ और चल। फिर वो तुरंत लंगड़ा खड़ा हो गया। यहाँ पर भी उन्होंने क्या करा, सो वहाँ 3 अध्याय में घटना पाते हैं। यहाँ पर तो ठीक वही घटनाएं देखते चले आएंगे जो पतरस के साथ हो रही हैं, वही पौलुस के साथ हो रही हैं। उसका एक कारण ही है कि ताकि लोग जान लें कि पतरस ही परमेश्वर का प्रेरित नहीं है, पतरस ही परमेश्वर का चुनाव नहीं है, पतरस ही को परमेश्वर ने सेवा नहीं दी है, लेकिन पौलुस के हाथों में परमेश्वर ने सेवा दी है। क्योंकि पौलुस पर लोगों का विश्वास करना कठिन था, क्योंकि पौलुस पहले मसीह विरोधी था, मसीह को सताता था, सुसमाचार विरोधी था, लेकिन उसका जीवन बदल गया है। अब लोग उस पर विश्वास करें, ना कल सुसमाचार पर विश्वास करें लेकिन पौलुस पर विश्वास करें, उसके कार्य पर विश्वास करें, और तब ऐसा हो सकेगा। बड़े जोर से कहा अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो, और कहा उछल कर खड़ा हो गया चलने फिरने। पौलुस इसको देखकर लुकानिया की भाषा में, लुकाने की भाषा, वो वहां पर जो समुदाय था वो उनकी ट्राइबल, मान लीजिए ट्राइबल लैंग्वेज है, उनकी क्षेत्रीय भाषा, और पौलुस जानता था, इसलिए उसने उस भाषा को उपयोग करा, क्योंकि वो वहां रह गया था, कुछ भाषा उसको समझ में आ गई थी, उसने उस भाषा को उपयोग करा ताकि लोग उस भाषा को समझ सके। अब ध्यान दीजिए, और सुन करके क्या हुआ, लोग चिल्लाकर कहने लगे देवता देवगण मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में उतर आए हैं। पतरस को भी लोगों ने देवता समझा था और लोग उसकी उपासना कर लेते। पतरस ने भी कहा था मैं तो तुम्हारे समान मनुष्य हूं। अब यहां पर इनके साथ अब क्या हो रहा है, ये इनके लिखा हुआ है, वे बर्नबास को ज्यूस कहने लगे तथा पौलुस को हिर्मेस, क्योंकि वो बात करने में प्रमुख था। ज्यूस मंदिर शहर के सामने ही था, उसका पुजारी। अब ये दो मुख्य मंदिर थे इनके, और उनका एक देवता का नाम ज्यूस था, एक देवता का नाम हिर्मेस था, और ये इनके अपने देवता थे जो उनके। अब अगर आप ट्राइबल देशों में, स्थानों में चले जाएं, या ऐसे हर जगह आप देखेंगे उनके अपने अपने देवता हैं, और उन देवताओं के नाम से वो मंदिर बनाते हैं। और ऐसा उस समय भी हुआ था, पुराने समय में प्रभु का सुसमाचार हो रहा है, लेकिन बहुत सारे, हम 17 अध्याय में भी देखेंगे कि लोग किस प्रकार से वो मंदिर बनाते थे और मूर्तियों को बनाते थे, और तब उन्होंने करके, और वो क्या थे, वो उस देवता के सामने, मंदिर के सामने बड़े बड़े बैलों को काट करके चढ़ाया करते थे। अब इन्होंने सोचा अरे यही तो देवता है जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, ठीक है ये तो हमारे सामने आ गए, इन्होंने बड़ा आश्चर्यकर्म किया। इस आश्चर्यकर्म को देख करके बहुत चकित हो गए, लेकिन वो समझ नहीं रहे। तब क्या हुआ, उसका पुजारी बैलों और मालाओं को फाटक पर ले आया, और उसने भीड़ के साथ मिलकर के बलिदान चढ़ाना चाहा। अब सबको जमा कर लिया, ओ ये दो हमारे बीच में बड़े देवता आ गए, और इसलिए इनको, इनके सामने बलिदान चढ़ाना है। उनके सामने ये दो साक्षात देवता थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पौलुस ने कहा, पौलुस और बर्नबास क्या थे मेरे प्रियो, उनको इस बात पर घमंड नहीं था, उन्होंने अपने आप को देवता नहीं बनाया, उन्होंने अपने आप को महान नहीं किया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को देवता बनाकर चलते हैं, लोग उनकी अगर ना सुने तो फिर वो ठीक नहीं है। ये अनुचित है। हम जो अगुवे हमें मुझे और आपको सावधान रहना है, हम जो प्रचारक है मुझे और आपको सावधान रहना है। हम बहुत सारे से प्रचारों को जानते हैं और मेरे प्रियो हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु हमें इस पाप से बचाए रखे, कि हमारे अंदर घमंड इतना उत्पन्न ना हो जाए, हमारे अंदर ईगो इतना उत्पन्न ना हो जाए कि हम सब को अपनी बात मनवाने के लिए तैयार हो सके। लेकिन लोगों के अंदर समझ होनी चाहिए कि वो समझ सकें कौन सी बात माननी है, कौन सी बात नहीं माननी, कौन सा परमेश्वर के वचन के अनुसार है, कौन से वचन के अनुसार नहीं है। और मेरे प्रियो हमें मनुष्य के दबाव में होकर के उन बातों को नहीं माना जिससे परमेश्वर का कार्य रुके, जिससे परमेश्वर की महिमा रुके और जो परमेश्वर हमारे जीवन चाहता है उससे हम वंचित रह सके। और मेरे प्रियो कितने लोग अपने विरोध को इस प्रकार से प्रकट करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे सिखाता चलाया है, आज भी सीख रहा हूँ और सीखते जब तक हम रहेंगे सीखते हम चले जाएंगे जब हम लोगों को देखते हैं। मैं अपने जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरी सहायता करें, मैं ऐसा अगुआ ना रहूं कि मैं अपने आप को देवता समझूं और अगर कोई मेरी बात ना माने तो मेरे नीचे गलत है। मेरे प्रियो सावधान है। यहाँ पर क्या हुआ 14 पद में, परंतु जब प्रेरितों ने अर्थात बर्नबास और पौलुस ने ये सुना तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और भीड़ की ओर ही चलाते रहे, हे भाइयों ये सब क्या कर रहे हो, हम भी तो तुम्हारे समान ही मनुष्य हैं, हम भी तुम्हारे समान, तुम क्या कर रहे हो भैया, क्यों हमें देवता बना रहे हो, क्यों हमारे लिए बलिदान चढ़ा रहे हो, क्यों हमारे लिए फूल चढ़ा रहे हो, क्यों हमारे लिए ऐसा कर रहे हो, हम भी तो तुम्हारे समान मनुष्य है। यहाँ पर स्थिति दूसरी थी, यानी कि हम बड़ों का यागों का दूसरों का सम्मान ना करें गलत है, लेकिन पूजा करना अलग बात है, देवता समझना अलग बात है, सम्मान कर देना अलग बात है। सम्मान हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हमारे कार्यों से, हमारे तरीकों से हम सम्मान देते हैं, लेकिन हम देवता नहीं बनाते किसी को। कुछ साल पहले हमें एक अपने जीवन में एक घटना का होकर जाना पड़ा और आंटी ने किसी से कह दिया आपने तो उनको फलाना देवता बना रखा है। उस समय बहुत तो लोग नाराज हो गए, बहुत लोग ना, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो 3-4 साल बाद वो सच्चाई चीजें सामने आ गई। हाँ उन्होंने उस समय उनको अपना देवता बना लिया था। और मेरे प्रियो मुझे और आपको साधन है, तब वो कह रहा है मनुष्य ही है और तुम्हें इस अभिप्राय से सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ व्यर्थ वस्तुओं को छोड़कर जीवित परमेश्वर की ओर फिरो जिसने स्वर्ग पृथ्वी और समुद्र तथा जो कुछ उसमें सबको बनाया, वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ बनाया, तुमको बनाया, मुझको बनाया, इस व्यक्ति को बनाया जो चंगा पाया है, सबको बनाया, उसकी ओर तुम्हें फिरना है। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है, उसके ऊपर हो, किसी देवता की ओर नहीं, किसी और के ओर नहीं। कह रहा है व्यर्थ वस्तुओं को छोड़ करके, आज कितने लोग हैं व्यर्थ वस्तु के पीछे भागे, धन है, संपन्नता है, नाम है, पद है, ये सारी चीजों के पीछे भाग रहे हैं संसार के लोग। और कई बार मसीह लोग भी इसी तरह बन जाते हैं, अपना स्टैंडर्ड बनाने के चक्कर में इतने ऊंचे हो जाते हैं कि कई बार वो प्रभु को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे प्रिय सावधान रहिए, व्यर्थ वस्तुओं की ओर, व्यर्थ कार्य की ओर, व्यर्थ बातों की ओर, व्यर्थ इच्छाओं की ओर, उनके ऊपर मत लगाइए मन, फंस जाएंगे। हमें सावधान है व्यर्थ वस्तु को पहचाने और उसे अपने आप को बचा सके। आगे चल करके कह रहा है 16 पद में, उसने बीते युगों के सभी जातियों को अपने अपने मार्गों पर चलने दिया, फिर भी उसने अपने आप को गवाह रहित नहीं छोड़ा, उसने अपने आप को गवाह रहित नहीं छोड़ा। मेरे प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कह रहा है किंतु वो भलाई करता रहा, तुम्हें वर्षा तथा फलवंत ऋतु देकर, चाहे तुम पापी थे चाहे धर्मी थे, जैसे भी थे, क्योंकि वो धर्मी अधर्मी दोनों पर वर्षा देता है, दोनों को सब कुछ अपना चांद और सूरज का प्रकाश देता है, सब पर दया करता है, देकर तुम्हारे हृदय को भोजन तथा आनंद से तृप्त करता रहा। ये कहने पर उन्होंने भीड़ को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदाना चढ़ाए। भीड़ तो पागल हो चुकी थी, भीड़ दीवाना हो चुकी थी, पर उन्होंने भीड़ को रोका। मेरे प्रियो मेरे और आपके लिए शिक्षा, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर बढ़े, वो बढ़े, हम घटे, उसका नाम आदर पाए। तब 19-20 पद में यहाँ पर कितना विरोध हो गया, यहाँ पर लिखा है विरोध सतावनी कट्टाई पथराव हो गया, परंतु अंताकिया तथा इकोनियम से यहूदी आए और उन्होंने भीड़ को अपने पक्ष में, अब देखिए कहां से, अंताकिया जहां से उन्होंने सेवा शुरू की थी 150 किलोमीटर ये दौड़ के चले आए वहां से, और इकने में जो वहां था जो इसके बारे में हमने पहले देखा वहां से, अरे ये सुसमाचार प्रचार हो रहा है उसके पीछे पीछे, जैसे पौलुस पहले मसीहों को सताने के लिए पीछे भागता था, अब लोग पौलुस को पकड़ने के लिए उसको सताने के लिए पीछे भाग रहे हैं। पौलुस यरूशलेम से निकल निकल के लोगों को जगह जगह जाके पकड़ता था और बंदी घर में डालता था। लेकिन अब पौलुस का पीछा कर रहे हैं, और क्यों पीछा कर रहे हैं कि ताकि किसी प्रकार से पौलुस सुसमाचार प्रचार ना करे, पौलुस का काम बिगड़ जाए, पौलुस की सेवा बिगड़ जाए। ओ पिता परमेश्वर, काम बिगड़ा। कितनी बार हम लोगों के पीछे इसी तरह पड़ जाते हैं, उनका काम बिगड़ जाए। पौलुस का प्रचार पौलुस का नहीं था, ये प्रभु यीशु मसीह का काम था, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार था। मेरे प्रियो, जरूर पौलुस को सतावनी का सामना करना पड़ा, पथराव का सामना करना पड़ा, लेकिन वो पौलुस के कार्य को, जो उस प्रभु यीशु मसीह का कार्य है, सुसमाचार का कार्य, उसको ना रोक सके। आज भी कई बार हमें बहुत सारे पथराव का सामना करना पड़ता है, बाहर से और भीतर से। शायद अनुचित बातें सुनने को मिलती हैं, शायद दोषारोपण सुनने को मिलता है, शायद बहुत सारी चीजें होती हैं। कई बार हम अपने दोष को छुपाने दूसरों पर दोष लगाते हैं, ये जीवन है, सब कुछ है। लेकिन कुछ भी होगा, हम भी मनुष्य हैं, दूसरों को दोषी चढ़ाते हैं, गलती करते हैं, लेकिन प्रभु का कार्य कभी नहीं रुकेगा। क्या हुआ, भीड़ ने क्या करा, पक्ष में आकर पौलुस का पथराव किया। कितनी दूर से आए थे वो, कितनी दूर से। और ऐसी आज भी होता है, दूर से चले आ रहे हैं, लोगों को भटकाने के लिए, बहकाने के लिए, भड़काने के लिए, विरोध करने के लिए चले आ रहे हैं। क्या हुआ, मृतक समझ पर नगर के बाहर घसीट ले गए, परंतु चेले जब उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठाकर नगर में गया। दूसरे दिन वो बर्बास के साथ दिरबे चला गया, वहां से अब आगे बढ़ गए, दिरबे चले गए। मेरे प्रियो, 21 से 28 तक तब हम देखते हैं, मेरे प्रियो, सच्चे परमेश्वर का कार्य है, और परमेश्वर का कार्य परमेश्वर की तरह से होता है। और रोमियो क्या कहता है, रोमियो 15 अध्याय में, पौलुस दान को मानता था, और पौलुस क्योंकि जानता था जहाँ सुसमाचार नहीं पहुँचा है वहाँ उसको सुसमाचार पहुँचाना है। और पौलुस कहता है मेरे मन की अभिलाषा ये है, रोमियो में बार बार कहता है यदि मैं सुसमाचार प्रचार ना करूँ तो मुझ पर आए, पिछले बार हम देख रहे थे। लेकिन 15 अध्याय में, 15 के 20 पद में, मेरे मन की आकांक्षा यही रही कि जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहाँ सुसमाचार सुनाऊँ, ऐसा ना हो कि दूसरों की नेव पर घर बनाऊं, परंतु जैसा लिखा है जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। जहां सुसमाचार नहीं सुनाया गया, मेरे प्रियो, ये अच्छी बात है। कलीसियाओं की स्थापना होना बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है, लेकिन भला हो कि हम उस स्थान पर कलीसियाओं की स्थापना करें जहां सुसमाचार सुनाया नहीं गया। प्रभु ने इतने पिछले 40-45 वर्षों में मेरी सहायता की, मुझे अगुवाई दी कि हम ऐसे स्थान पर सुसमाचार का आरंभ कर सके कलीसिया का, जहां प्रभु का काम नहीं था, चाहे बाराबंकी हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे और स्थान हो, बस्ती हो, और उसके बाद कानपुर में भी बहुत सारे सीधे स्थान पे 3 कलीसिया अलग स्थानों में सहयोग के साथ। जब उन्नाव में कार्य की सेवा शुरू करी गई भाई बहादुर के साथ, बेतल में थे, वहां पर भी कुछ नहीं से शुरू करा। आज प्रभु धन्यवाद हो, वहाँ पर बहुत सारे विश्वासी हैं, बहुत सारी कलीसियाँ हैं, लेकिन शुरुआत बेतल कलीसिया, बेतनी कलीसिया से हुई जहाँ कुछ नहीं था। प्रभु ऐसे काम करता है। मेरे प्रियो, काश प्रभु के लोगों को ये दर्शन मिले, ये बोझ मिले, ये सच्चाई मिले। लिखा है कि मैं दूसरों की नेव पर घर ना बनाऊं, ये हमारे जीवन होना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन बना। अब 21 पद से लेकर के क्या वो किस तरह से समाप्त करा, प्रोत्साहित करा, सुसमाचार का कार्य हो रहा है, 21 पद से लेकर के 28 पद तक अपने केंद्र अंतांकिया के वापस जाने की तैयारी है। लेकिन प्रभु का काम किस प्रकार से हो रहा है, और उस नगर में सुसमाचार सुनाने तथा बहुत से चेले बनाने के पश्चात वे लुस्त्रा वापस आ रहे हैं, इनकुमिया और अंतांकिया को लौट आए, उसी रास्ते से वो वापस लौट गया। लेकिन क्या हुआ, और चेले उनके मन को स्थिर करते और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए ये कहकर प्रोत्साहित करते रहे। क्या कर रहे हैं, वापस आए, अंताकिया कैपिटल था, अंताकिया उनका केंद्र बन गया था, मैंने पहले बताया था, यरूशलेम से शिफ्ट होकर अंताकिया उनका सुसमाचार का केंद्र बन गया था। लेकिन क्या कर रहे हैं, चेलों को मनों को स्थिर कर रहे हैं। ओ तुमने विश्वास किया है, परेशान मत हो, घबराओ मत, प्रभु सच्चा है, प्रभु जीवन है, विश्वास में बने रहो, विश्वास को थामे रहो, प्रभु में बने रहो। उनके मन को स्थिर कर रहे हैं, घबराहट से, व्याकुलता से, बेचैनी से स्थिर कर रहे हैं, और विश्वास में स्थिर बने रहने के लिए ये कहकर प्रोत्साहित करते रहे, प्रोत्साहित कर रहे हैं, ना कि उनके मन को स्थिर कर रहे हैं, विश्वास में उनको स्थिर कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रोत्साहित करें। क्या प्रोत्साहित करें, ठीक है, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना पड़ेगा। ओ ये सच है मसीह जी में हमें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, उसको पापों की क्षमा पाई है, प्रभु ने पश्चाताप किया है, आपके जीवन में प्रभु का उद्धार का कार्य हुआ है, उसके सुसमाचार को जाना है, ओ पापों की मजदूर तो मृत्यु है परंतु प्रभु यीशु मसीह का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आना जीवन है, ये कहकर आपने पापों की क्षमा को माना है, प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पापी, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बचा लीजिए, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ, मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ, सौंपती हूँ, ये प्रक्रिया आपके जीवन में हुई है, मेरे प्रियो सच में विरोधास्ता है, घर वालों की तरफ से विरोधास्ता है, पड़ोस के विरोधास्ता है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं उनके साथ विरोधास्ता है, बहुत जगहों पर विरोधास्ता है, बहुत सारी बातें मैं बार बार लोगों से बात करते सुनते हैं, किस प्रकार से लोग सताते हैं, लोग ठट्टा उड़ाते हैं, आपके ऑफिस में ठट्टा उड़ाते हैं, आपके कार्य में, जिस कार्य में कई बार हम उन भाइयों से सुनते हैं जो हमारे कुछ भाई लोग टाटा में हैं, जो उन्होंने विश्वास किया है, विश्वास करने बाद उनको किस प्रकार से लोगों ने हंसा हंसी उड़ाई, ठट्टा उड़ाया, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो वो विश्वास में स्थिर है। तब वो कहता है फिर उन्होंने प्रत्येक कलीसिया के प्राचीन नियुक्त कर, अब उन्होंने कलीसिया के प्राचीनों को नियुक्त करना शुरू करा है, कलीसिया बन रही है, इन स्थानों बढ़ती चली आ रही है, अब कलीसिया के प्राचीन को नियुक्त करना, उपवास सहित प्रार्थना की, प्रार्थना उपवास के साथ प्रार्थना, सुसमाचार प्रचार और प्रार्थना ये साथ चल रही है, कलीसिया में प्राचीन नियुक्त किए जा रहे हैं, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, सताए जाओगे, कठिनाई आएगी, क्लेश उठाना पड़ेगा, परेशानी होगी, लेकिन पहला पत्र उसका चार अध्याय, यदि हम मसीह होने का कारण दुख उठाएं तो कौन सी ये बड़े हमारे लिए आनंद की बात है, और ये कहकर उसने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया जिसे उन्होंने विश्वास किया था। 24 पद से लेकर के 28 पद तक अब वो किस प्रकार को समाप्त करता है, पौलुस और बरनबास सुसमाचार के लिए उनका समर्पण था, राज का होते हुए चले आए, फिर पिर्गा के में वचन सुनाकर वे अतालिया गए और वहां से वे जहाज द्वारा अंताकिया गए और वहां परमेश्वर का अनुग्रह उस कार्य के लिए सौंप गए जिसे उन्होंने पूरा किया था। यहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया को एकत्रित किया और जो कुछ परमेश्वर ने उनके साथ किया था उसे कह सुनाया। ओ पिता ये सच है, कलीसिया के साथ अपने सुसमाचार के कार्य की सेवा को बांट रहे हैं। ओ हम वहां गए थे, ये कठिनाई थी, वहां विरोध होता, वहां सुसमाचार दिया, उन्होंने विश्वास किया, वो प्रभु के पीछे चले, उनके साथ ऐसा हुआ, सारा एक सुसमाचार कहना चाहिए आज के शब्दों में, एक प्रकार से वो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट दे रहे हैं उनकी मिशनरी यात्रा की, विजिट की, ये कहकर कि किस प्रकार परमेश्वर ने गैर यहूदियों के लिए विश्वास के द्वार खोल दिए, तब वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे, किस प्रकार से उन्होंने आनंदित कि क्या हुआ, गैर यहूदियों के लिए विश्वास के द्वार खोल दिए, ना केवल यहूदी लोग लेकिन अन्य जातियों ने भी विश्वास किया। ये पहली मिशनरी यात्रा में किस प्रकार से वे आगे बढ़े और आगे बढ़कर के प्रभु के लिए कार्य किया। मेरे प्रियो सच है, एक ही चीज है, सुसमाचार प्रचार, कष्ट आएगा, दुख आएगा, विरोध आएगा, कठिनाई आएगी, लेकिन सच्चाई के साथ जहां सुसमाचार प्रचार नहीं किया गया, कितना अच्छा हो जिनको कलीसिया स्थापित करने का बोझ है, प्रभु का धन्यवाद, वो कलीसिया स्थापन करें, लेकिन कितना चाहो कि वहां से जाएं जहां प्रभु का काम नहीं है, उन स्थान में पौलुस कहता है ऐसा ना हो मैं दूसरों की नींव पर घर बनाऊं। हाँ ये जरूर है, हम कई बार दूसरे की फसल को काटते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं का यौहन्ना में उसके 4 अध्याय में तो जिन फसल के लिए हमने मेहनत नहीं करी उनको फसल को हमें काटना मिलता है। जब हम 12 बजे गए थे, हम जानते हैं हमारे जाने से पहले वो हमने बहुत काम किया था, सुसमाचार उस समय दूसरा था, पूरे पूरे गांव-गांव में घर घर जाके सुसमाचार बांटा, और जब हम लोग वहां पर पहुंचे कोई कलीसिया नहीं थी, केवल एक मेथोडिस्ट कलीसिया थी और कोई विश्वासी कलीसिया नहीं थी, कोई विश्वासी नहीं था, पर उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी वचन सुना था, वचन का बीज उनके द्वारा उनमें बोया गया था, उनके पास कोई ना कोई पुस्तक या कोई ना कोई साहित्य उनके पास था जिनको पढ़ा था, लेकिन प्रभु ने दया की ताकि हम वहाँ पर प्रभु की कार्य कर सकें। प्रभु का काम अद्भुत काम है मेरे प्रियो, सुसमाचार का कार्य कभी भी नहीं सुना, और प्रेरित काम इन सारी प्रश्नों को देखते जाएंगे। जब हम दूसरी मिशनरी यात्रा में आएंगे, अब आगे वाले संदेह को, तब दूसरी मिशनरी यात्रा में अब किस प्रकार से पौलुस अलग अलग कलीसियाओं को स्थापित कर रहा है, पहले यात्रा में उसके ऐसी विजिटिंग को देखते हैं जहाँ सुसमाचार प्रचार किया और स्पष्ट अभी जरूर कलीसिया स्थापना हुई है, उसने प्रेरितों को नियुक्त किया है, सब कुछ किया है, लेकिन जो मुख्य कलीसिया का वर्णन है वो हम दूसरी मिशनरी यात्रा में देखेंगे। समाप्ति पर मेरे और आपके लिए चुनौती, या मेरे और आपके लिए सोचने और विचारने की बात ये, जिसको मुझे और आपको अपने जीवन में लेना है, मेरे और आपके जीवन में, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के अगुओं के लिए, उनके कार्य के लिए क्या समर्पण है मुझे और आपको देखना है। मेरे प्रियो, भ्रमित ना होइए, कलीसिया को पहचानिए, सुसमाचार को पहचानिए, परमेश्वर के वचन को पहचानिए। निर्णय लेने से पहले कोई भी हो बात सोचिए, क्या ये वचन के अनुसार है। मैं बार बार कहता हूँ, बात प्रभु मुझे सिखा रहा है, प्रभु ने मुझे सिखाया है, और जो भी मैं कदम उठाना चाहता हूँ मैं इस बात को सचेत होकर, क्या ये वचन के अनुसार है, हमें देखना है। मेरे प्रियो, साधन है, प्रभु सहायता करें। आने वाले इतवार को प्रभु की सहायता से हम 15 अध्याय में देखेंगे। 15 अध्याय एक अलग अध्याय है, उस अगली बार मैं वर्णन करूँगा। सो काश परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे।